आज हम पर्यावरण विज्ञान यानी एनवायरमेंटल साइंस जो कि सीनियर सेकेंडरी का एक कोर्स है एनआईएस का, उसके मॉड्यूल 4 कंटेम्पररी एनवायरमेंटल इश्यूज का जो लेसन 14 है हमारा, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज यानी वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे ओजोन लेयर के बारे में और एसिड रेन के बारे में करेंगे और न्यूक्लियर डिजास्टर्स के चलते, ऑयल स्पिल के चलते और हजार्डस वेस के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह से वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन लेयर के अपक्षय की या क्षति की। तो सबसे पहले बात करें कि ओजोन का जो परत है उसकी संरचना क्या है। जो ओजोन है वो एक बहुत ही प्रतिक्रियाशील अणु है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन में 2 होते हैं लेकिन ओजोन के ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से ये युक्त है, यानी इसका जो फॉर्मूला है वो O3 होता है। और जो ओजोन लेयर है वो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह जो कि लगभग 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है उस पर होती है, और इसको हम इस लेयर को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। और इसी में जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें एक ओजोन की एक पतली सी परत है जिसे कि हम ओजोन लेयर कहते हैं। और ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, वो क्या करती है, इसका मुख्य कार्य होता है कि जो सूर्य से निकलने वाली घातक पराबैंगनी किरणें जो हैं उनके विकिरण को रोकने के लिए एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में ये काम करती है। और जो अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज हैं उनमें उनकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो दृश्य स्पेक्ट्रम की तुलना में बहुत ज्यादा उच्च ऊर्जा वाली होती हैं। और इनको हम यूवी रेज को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। पहले तरह की तरंग होती है हमारी यूवी ए रेज होती हैं जिनकी वेवलेंथ होती है 320 से लेकर 400 नैनोमीटर के बीच में। और दूसरी तरह की जो वेवलेंथ है वो जो वेव्स हैं वो है यूवी बी टाइप में जिनकी की तरंग दैर्ध्य 280 से कम होती है। और जो तीसरी तरह की हैं उनकी भी वो जो यूवी सी टाइप है वो उनकी भी तरंग दैर्ध्य 280 से ही कम होती है। और लेकिन जो यूवी सी टाइप जो रेज हैं वो सबसे ज्यादा जो वाइटल सिस्टम्स हैं उनको डैमेज करती हैं, उनको लॉस करती हैं, उनको हानि पहुंचाती हैं। और ये जो ओजोन लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर पर एक जो पतली सी परत है वो उसमें क्या कहाँ से वो पतली होती जा रही है, कहाँ वो एक उसका जो पर्दा जो परत है वो कहाँ कहाँ डैमेज होती जा रही है, ये सबसे पहले 1970s के दशक में सोचा गया था इसके बारे में। तो जो रीजन था जहां पर ये दिखी, ये परत का महसूस किया गया कि वो थिन हो रही है, वो था अंटार्कटिका का क्षेत्र। और ये अंटार्कटिक जो क्षेत्र है उसमें जो फिशरीज है, जो समुद्री, क्योंकि वहां तो सारा बर्फ ही बर्फ पानी है, तो जो जलीय पारितंत्र है वो समुद्री ओशन का जो इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, मैरीन इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, तो वहां की वो प्रणाली है, क्योंकि वहां पर आपको उसी तरह के जीव मिलते हैं जो उस वातावरण में सर्वाइव कर सकते हैं। और यही जो था कि जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है वो कहीं कहीं से पतले हो रही थी, पतले होने के चलते वो एक खेत के जैसे दिख रही थी, तो इसीलिए हम उसे ओजोन होल कहते हैं। अब इसके रीजन क्या थे, ओजोन जो लेयर है वो दोनों तरह से, या तो वो नेचुरली भी डैमेज होती है, वो उसमें बहुत कम वक्त लगता है, बहुत ज्यादा वक्त लगता है, और वो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस में रहा, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनके चलते ये ज्यादा तीव्रता से वृद्धि किया इसके ओजोन होल में, या वो परत पतली होने में ज्यादा हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ओजोन लेयर है जो अपक्षय हो रही है उसमें नेचुरल और ह्यूमन यानी मानव के द्वारा ही जो कारण दिए हैं उसके चलते ये नष्ट हो रही है। तो प्राकृतिक कारण में क्या है कि जो प्रकृति में कई तरह के टॉक्सिक पदार्थ जो है उत्पन्न हो जाते हैं, और जो कि वो पदार्थ क्या करते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है यानी सम ताप मंडलीय जो ओजोन है उसकी लेयर को नष्ट कर देता है। और इसमें जो रोल निभा रहे हैं जो यौगिक हैं वो कौन कौन से हैं? वो हाइड्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, मीथेन हो सकती है, हाइड्रोजन गैस हो सकती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, क्लोरीन मोनो ऑक्साइड हो सकती है। कई बार ज्वालामुखी फटने से बहुत तरह की गैसेज और पदार्थ निकलते हैं, उसके चलते क्लोरीन की एक काफी इम्पोर्टेंट क्वांटिटी जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में जब फेंक छोड़ी जाती है तो उसके चलते भी ये जो लेयर है वो पतली होती जाती है। और समताप मंडल में के जो छोटे कण हैं जिन्हें कि हम स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल कहते हैं वो भी इनके बिना ओजोन लेयर के पतला करने के या विनाश का कारण। और ह्यूमन एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे हो सकती है, इससे जो संबंध है ये जो घटना है जिसमें कि वायुमंडल में जो क्लोरीन के हमेशा क्लोरीन के एटम्स इमिट होते रहते हैं, उत्सर्जित होते रहते हैं, जो कि ओजोन की जो लेयर है उसके विनाश के गंभीर कारण बनते हैं। क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरीन परमाणु बड़ी कुशलता से ओजोन लेयर के जो अणु हैं उनको नष्ट कर देते हैं। और सबसे ज्यादा जो हानिकारक है, विनाशकारी जो है वो क्या है कि जो ह्यूमन मेड है यानी जो सिंथेटिक क्लोरीन के परमाणु हैं, अणु हैं, उनसे ही इसको ज्यादा डैमेज होता है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, जिनका कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, चाहे हम रेफ्रिजरेशन के केस में कर रहे हों, एयर कंडीशनिंग के लिए है, या हम स्प्रे कर रहे हैं कुछ चीज का, तो उससे ये जो वातानुकूलित करने के लिए है उसमें किया जाता है। और ये क्या करते हैं, जो जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते हैं, समताप मंडल में जब पहुंचते हैं, तो ये सीएफसीज में से जो क्लोरीन के परमाणु हैं वो क्या करते हैं, ओजोन के साथ में वो रिएक्शन करते हैं और क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के अणु बनाते हैं। जब ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड एक ऑक्सीजन के अणु के साथ क्रिया करती है तो उसमें बहुत और ज्यादा क्लोरीन के परमाणु छोड़े जाते हैं, यानी एक क्लोरीन परमाणु अगर है तो कम से कम 100,000 ओजोन के जो अणु हैं उनको तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो जब उच्च ऊर्जा वाले जो यूवी रेडिएशंस हैं और जब ऑक्सीजन के अणु जो उससे मिलते हैं तो वो ओजोन का परमाणु बनाते हैं, लेकिन जो क्लोरीन है वो उससे क्रिया करती है और वहां वो लेयर पर जब क्रिया होती है तो वो लेयर पतली हो जाती है और खेत के दिखाई देती है। आपके बुक में टेबल नंबर 14.2 है जिसमें कि ओजोन क्षयकारी को जो क्षति पहुंचाने वाले कुछ रसायन है और उनका हम वो रसायन कहाँ पर हम उपयोग कर रहे हैं वो दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमने सीएफसी से बात की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, जो कि हमने बोला रेफ्रिजरेशन में है, एरोसोल के रूप में हम करते हैं, फॉर्म के खाद्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए यानी फ्रिज के लिए में भी से भी निकलते हैं, और जो गर्म ऊष्मा देने वाले उपकरण है उनसे भी ये निकलते हैं, हमारे कॉस्मेटिक्स हो गए, ऊष्मा को पहचानने वाले जो विलायक हैं या प्रशीतलक हैं, अग्निशमक जो हैं चीजें उनमें हम उपयोग करते हैं, जब उपयोग करें तो वो इमिट होगा और उससे भी ऊर्जा क्षति होती है। दूसरे तरह के हैं एससीएफसी जो कि शीतलक है, एरोसोल्स है, फॉर्म और अग्नि है, और थर्ड टाइप है जो रसायन है वो है मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो कि सॉल्वेंट के रूप में है, विलायक के रूप में है। उसी तरह से कार्बन टेट्राऑक्साइड का भी अगर हम टेट्रा क्लोराइड का अगर इस्तेमाल करते हैं जो कि विलायक फॉर्म में होता है, वो भी ओजोन को क्षति पहुंचाने वाला रसायन है। अब बात करते हैं कि ओजोन जो परत है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों सब लोग चिंतित हैं कि ओजोन होल है, ब्लैक उसको जो होल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहला तो रीजन यही है कि ये जो परत थी जो कि सूर्य से निकलने वाले जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनके विकिरण को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, अगर ये कहीं पतला हो जाता है या इसमें छेद हो जाता है तो क्या होगा, वो डायरेक्टली ये सारे विकिरण अब उस वातावरण को जो लेयर तो कमजोर है तो वहां छेद है उसमें से वो नीचे आएगा और सीधे ही पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगा। जब पृथ्वी की सतह पर जाएगा तो यूवी जो रेज हैं उनकी ज्यादा मात्रा नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में ही जरूरत होती है मनुष्यों को और अन्य जीवों को, क्योंकि यूवी जो है वो यूवी रेज विटामिन डी को के संश्लेषण में हेल्प करती है, इसीलिए बोला जाता है ना कि सूरज की धूप लेना जरूरी है तो उससे विटामिन डी मिलता है। तो यूवी विकिरण जो है वो जर्मिसाइड्स जो भी हैं, जर्मनाशी हैं, उनके जो के रूप में भी इस्तेमाल होती है, उनको नियंत्रित करने का, सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने के लिए भी जरूरी चाहिए होती है। लेकिन इसकी एक लिमिटेड मात्रा ही हमें जरूरत है, सारी बहुत सारा नहीं चाहिए। लेकिन जब एक्सेस में अगर आएगा तो क्या होगा, वो मानव पर, पौधों पर, अन्य जीवों पर और निर्जीव वस्तुओं पर भी अपना प्रभाव डालेगी। तो मानव पर किस तरह से प्रभाव आएगा इसका? त्वचा का कैंसर के प्रति असंवेदनशीलता में वृद्धि होगी, मोतियाबंद में वृद्धि होगी, कॉर्निया की क्षति हो गए, नेत्र संबंधी रोग होने के कारण हो जाएगा, और मानव का जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमजोर हो जाएगा, और डीएनए को भी हानि पहुंचती है। अगर हम पौधों की बात करें तो जो प्रकाश संश्लेषण का है वो, उसका भी संदनम दमन होगा, उपापचय क्रिया है उसका भी संदनम दमन होगा, वृद्धि रुकेगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, म्यूटेशन का कारण बनती है, और जो वन उत्पादकता की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। उसी तरह से जब अन्य जीवों की बात करें तो जैसे समुद्री या अलवण जल जीव है वो भी यूवी रेस के प्रति संवेदनशील होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, और खास तौर से अगर फिश लार्वा है वो ज्यादा संवेदनशील होता है। और जो प्लांक्टोन्स हैं उनकी भी पॉपुलेशन बुरी तरह से खत्म हो जाती है, और इससे फिश के अलावा श्रिम्प हैं और प्रॉन हैं उनके भी जो लार्वा हैं वो भी प्रभावित होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये तो लिविंग बींग के ऊपर बात हो गई, लेकिन जो हमारे नॉन लिविंग बींग यानी निर्जीव जो भी वस्तुएं हैं उसको भी आप उसका प्रभाव देख सकते हैं। जैसे पेंट को अगर आपने कुछ पेंट कराया है उसको झड़ने को बढ़ावा मिलता है, प्लास्टिक के टूटने को खतरा होता है वो भी बढ़ता है, वायुमंडल में जो तापमान का जो प्रवणता स्तर है वो भी प्रभावित होता है, और जो वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली है वो भी प्रभावित होती है, और इसके चलते हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं। ये भी एक इसका हिस्सा है कि जिस सीजन में जितना टाइम ड्यूरेशन गर्मी के लिए होना चाहिए वो गर्मी का ड्यूरेशन आगे चला जा रहा है, आगे बारिश का बढ़ जाता है, उसके आगे ठंडी, तो या ठंडी कम पड़ रही है कई बार भीषण गर्मी पड़ जा रही है, तो ये भी इस लेयर के कमजोर होने से ही हो रहा है। अब इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जाए? तो 1989 में हेलसिंकी में और मॉन्ट्रियल में 1990s में जो बहुत कई सारे अर्थ समिट और बहुत सारे अधिवेशन और प्रोटोकॉल्स आए थे, जिससे कि सबको पता लगा सारी दुनिया को कि हमें सीएफसीज के उपयोग का कम करना होगा, ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना होगा, उसके लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स का कम इस्तेमाल करें ताकि ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले, और इसीलिए हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पर भी काफी इस्तेमाल करते हैं। जैसे पॉल्यूशन कम करने के लिए हम सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे कि ग्रीन फ्यूल माना जाता है, और सीएफसी के जगह पे ऑल्टरनेटिव एक विकल्प ढूंढा गया है जो कि हाइड्रोक्लोरिक फ्लोरोकार्बन के प्रयोग के लिए बात की गई है कि उसका प्रयोग करें। और सीएफसी की बात करें तो सीएफसी की तुलना में एचसीएफसी जो है वो भोजन परत को अपेक्षाकृत कम हानि पहुंचाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहते लेकिन हानि कम पहुंचाते हैं, तो एचएफसीएस का भी इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं एसिड ड्रेन की। तो एसिड ड्रेन क्या होती है? ये उन सभी अपशिष्ट जो भी वर्षा हो गई, कोहरा हो गया, धुंध हो गई, बर्फ हो गई को दिखाती है, और जो कि जो बारिश है वो सामान्य से ज्यादा अम्लीय होती है, और ये जो एसिड रेन है वो पर्यावरणीय प्रदूषण से जो निकलने वाले गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, कार्बन के ऑक्साइड हो गए, जो कि फॉसिल फ्यूल के जलाने से पैदा होते हैं उनके कारण होती है, क्योंकि वो जाकर आसमान में सटल हो जाते हैं वायुमंडल में, और फिर जब वो वाष्प बन के वापस पृथ्वी पर बरसते हैं तो बारिश के रूप में। और यही वजह है कि अगर आप सभी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब पहली बार बारिश आ रही होती है मौसम की, तो उसमें क्या होता है कि ना वो सारे जितने भी अणु हैं वो जो सटल थे वायुमंडल में वो नीचे आते हैं, और आपको आपकी आंखों में जलन या कुछ एलर्जी जैसा आपको फील होता है। तो वो जो पहली बारिश है वो एसिड रेन ही समझिए वो ही होती है। और इसका जो संगठन है तब होता है जब, जैसे हमने बात की कि जो अम्लीय गैसें हैं वो फॉसिल फ्यूल के साथ में जो विद्युत संयंत्र के उद्योग हैं और ऑटोमोबाइल हैं उनसे ही उत्सर्जित होती है और बारिश की बूंदों के साथ मिल जाती है। और ये जो एसिड रेन है ये हमारे इकोसिस्टम को भी अनेक तरह से प्रभावित करती है, और जो वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो ही उत्सर्जित होकर अम्ल वर्षा बनाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जो एसिडिक स्मोक है वो कोहरा और धुंध जो वातावरण से बाहर चले जाते हैं और बदले में क्या करते हैं कि वो धूल के कणों पर जमा होकर वनस्पति पर अम्ल जमावों के परत के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और उसके बाद में वो ओस जो है ओस बन जाती है। आपको जो टेबल 14.3 है उसमें अम्लीय गैसों और उनके स्रोत, उत्सर्जन के स्रोत बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्रोत के चलते ये गैसेस रिलीज होती हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन जलता है या औद्योगिक प्रक्रियाएं होती हैं या शोषण होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसी तरह से अगर धान का क्षेत्र है या खेत है और जो आर्द्र भूमि है, गैस ड्रिलिंग है या भूमि भरण है, लैंडफिल हो गए, पशुओं दीमक है, उनके थ्रू मीथेन गैस निकलती है। खास तौर से पैडी के फील्ड में अगर देखें तो मीथेन गैस उससे रिलीज होती है। उसी तरह से बायोमास अगर जल रहा है या इंडस्ट्रियल कोई स्रोत है या बायोजेनेसिस है या प्लांट आइसोप्रीन है उससे जो गैस निकलती है वो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे आधी जली लकड़ी अगर है तो धुआं अगर दे रही है तो वो भी उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ईंधन जलाते हैं सब जीवाश्म ईंधन खासतौर से औद्योगिक स्रोत हैं या ज्वालामुखी फर्जता है या महासागरों से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और बिजली है, बायोमास है, जल है, महासागर है या जो पावर प्लांट्स हैं उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो ये सभी जो है अम्लीय गैसें कहलाती हैं। इसके हानिकारक प्रभाव क्या हो सकते हैं कि ये जलीय हो या फिर स्थलीय हो दोनों ही तरह के जीवों को प्रभावित करता है और साथ ही साथ ये हमारा जो है स्मारक जो भी है मॉन्यूमेंट्स है उनको भी प्रभावित करता है, उस पर भी उसको भी नुकसान पहुंचाता है। जलीय जीवन पर कैसे कि जो बेसिक जो पीएच हमें चाहिए होता है वो पीएच 7 का होता है, तो जो आसपास के माध्यम है जल का माध्यम है उसमें पीएच जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, प्रोसेसेस के लिए। अगर ज्यादा हो जाता है उस पीएच या कम हो जाएगा तो उसे क्या होगा, जो मछलियां हैं, मेंढक हैं या जो अन्य जलीय जीव हैं उनके जो अंडे हैं या लार्वा हैं उनके पीएच में परिवर्तन होगा। अगर पीएच में परिवर्तन होगा तो वो उसके प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं और क्या होता है कि ये गैमेट्स को भी मार देता है और जिससे क्या होता है उनका लाइफ साइकिल और प्रोडक्टिविटी दोनों पर ही असर पड़ता है। और जब इसमें असर पड़ेगा तो मृत्यु दर बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा कि जो उनकी संख्या बढ़ेगी, मरेंगे तो उनकी संख्या बढ़ गई मरने से, तो मरने की संख्या में जब वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा कि ये जो एसिड रेन है, एसिड वाटर है, वो क्या करेगा जो एक्वेटिक फूड चेन है उनको भी प्रभावित करेगा। जब वो प्रभावित होगा फूड चेन तो क्या होगा कि पारिस्थितिक तंत्र का जो असंतुलन है वो पैदा हो जाता है। उसी तरह से अगर हम देखें जो अम्लीय पानी की झील है उसमें जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं या प्लैंकटॉन्स हैं या माइक्रोब्स हैं वो मर जाएंगे और इससे क्या होगा कि जो झीलें हैं वो लाइफलेस हो जाएंगी, प्राणहीन हो जाएंगी। और ऐसे जो अम्लीय और बेजान तालाब हैं उनमें हम फिशरीज का यानी मत्स्य पालन भी नहीं कर सकते हैं और उसमें पालन वो नहीं कर पाएंगे तो हम अरे आजीविका जो होती है लाइवलीहुड है उसको भी खतरा होगा। अगर हम स्थलीय जीवों की जीवन पर प्रभाव देखें तो क्या होगा कि जो एसिड रेन है वो पौधों की जो फर्स्ट लेयर है क्यूटिकल जो है उपजाऊ में उसको नुकसान पहुंचाता है, जिससे क्या होता है कि जो पत्ता हरा दिखना चाहिए वो येलोइश हो जाता है, पीलापन आ जाता है उसमें। क्योंकि पीला क्यों हो गया, क्योंकि उसने वो लेयर नष्ट होने से उसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने की जो क्षमता थी वो कम हो जाती है और जब कम फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या पत्ते पीले पड़ने पड़ेंगे पड़ेंगे पीले जब पत्ते हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, पत्ते जड़ जाएंगे और जो फसल की उत्पादकता है वो उसमें वो कमी आ जाती है। और अम्लीय माध्यम में बहुत सारे जो भारी धातुएं हैं, जैसे एग्जाम्पल ले हम सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पारा हो गया, सीसे हो गया, उसके निक्षारण को भी बढ़ावा मिलता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो धातु है पानी पृथ्वी के अंदर से अंडरग्राउंड वाटर जब निकालते हैं तो उसमें भी वो उसके छनकर चाहते हैं और जो मिट्टी है उसको भी प्रभावित करते हैं ये सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म पादप। और मिट्टी जो है इससे क्या होता है, बेजान हो जाएगी और उसमें भी वो जो सॉइल है वो भी लाइफलेस हो जाती है और पौधे और जो सूक्ष्म जीव हैं वो इन धातुओं का अवशोषण कर लेते हैं उनकी स्किन के थ्रू, अब उनकी बॉडी में चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ना वो उसकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी क्रिया जो है वो भी प्रभावित होती है। अब हम बात करते हैं कि एसिड रेन का फॉरेस्ट पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि वनस्पतियां वनों को नुकसान करती है, वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं और जो इससे क्या होता है कि लैंडस्केप को भी हानि पहुंचती है और जो हमारी मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं या स्मारक हैं उन पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। खासतौर से जो भी मार्बल के बने हुए हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं तो वो भी पुराने ऐतिहासिक इमारतें हो गई, कलाकृति हो गई या पर भी, और जो वस्त्र हैं उन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। और यही वजह है कि अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड फेमस ताजमहल है वो भी एसिड रेन के चलते खराब हो रहा है, उसके मेंटेनेंस के लिए काफी प्रयास किए जाते रहते हैं। और इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इससे निपटने के लिए एसिड रेन से, कि हम वातावरण में कम से कम सल्फर और नाइट्रोजन के उत्सर्जन कम करें, अगर ये कम होगा तो अम्ल वर्षा पर भी नियंत्रण हो जाएगा और कम सल्फर जो है ईंधन या प्राकृतिक गैस या धुआं जो कि कोयले की जो कोयला जलाने से होता है उन वो भी अगर हम कम करते हैं तो इन अम्ल वर्षा की जो घटनाएं उनको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें हम कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर डिजास्टर्स के बारे में। जो नाभिकीय ऊर्जा है उस वो भी क्या करता है कि कई तरह से हमारी पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं के लिए एक ऑल्टरनेट अच्छा विकल्प देता है, लेकिन इसको आरंभ करने में भी कुछ समस्याएं हो जाती हैं और गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। और ये जो है समस्याएं वो क्योंकि वैसे तो न्यूक्लियर एनर्जी काफी प्रतिकूल है लेकिन आर्थिक रूप से हम इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं उनमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाए या कुछ अगर हो जाए तो उसमें जो दुर्घटनाएं होती हैं वो काफी गंभीर होती हैं, यानी उनका खतरा बना ही रहता है। और क्यों, क्योंकि ये जो है ना वातावरण में बहुत ही हैजार्डस या सकते हैं खतरनाक जो है रेडियोधर्मिक सामग्रियों को उत्सर्जित कर देते हैं, पदार्थों को उत्सर्जित कर देते हैं। और ये जो है कैसे कि प्राकृतिक परमाणु आपदाएं और उनका घटित होना, दूसरी बात हो सकती है कि जो एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनसे जो उत्पन्न होते हैं अवशिष्ट जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसका सुरक्षित निपटान नहीं होने की वजह से भी ये आपदाएं, ये बहुत बड़े बड़े डिजास्टर हो जाते हैं। जैसे आप देखें कि दिसंबर 1952 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि कनाडा में है चाक नदी पर टोरंटो में, उसमें कुछ लीक खराबी आई तो उससे काफी नुकसान हुआ। उसी तरह से एक घटना हुई थी विंड स्केल प्लूटोनियम उत्पादन का केंद्र यूके में। तीसरी जो मेजर घटना थी जिसको कि बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है वो थी 26 अप्रैल 1986 में जो चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर था कीव में, सोवियत संघ का एक पहले हिस्सा होता था ये, उसमें भी जब लीकेज हुआ तो उससे भी काफी नुकसान हुआ था और वो बहुत बड़े क्षेत्र में इसका रेडिएशन फैला था। अब पर्यावरण पर परमाणु आपदाओं का प्रभाव कैसे पड़ता है कि जो लीकेज है परमाणु का, जो लीकेज से के हानि प्रभाव कारक जो प्रभाव है या तो बहुत जल्दी दिखाई देंगे या वो धीमी गति से भी हो सकते हैं, मतलब दोनों तरह से हो सकते हैं, एग्रेसिव भी हो सकते हैं और थोड़े से माइल्ड भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, और जो परमाणु विकिरण के जो है ना घातक और तत्काल प्रभाव होते हैं, जैसे कि हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था और उसमें जब जापान के दो शहरों यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम ब्लास्ट बम्बार्डमेंट हुआ था, जब ये एटॉमिक वेपन छोड़े गए थे, तो उससे क्या हुआ था, उसके जो कई जेनेटिक विकार भी हुए थे, काफी लोगों को और तरह से भी प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम रही, और ये लाइफ लॉन्ग आगे आगे जनरेशन में भी देखे जा सके। तो और उसी तरह से इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी अगर दो देशों की भी लड़ाई होती तो कोशिश ये किया जाए कि एटॉमिक जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। और जैसे धीमी गति के जो परमाणु हैं विकिरण, वो भी क्या होते हैं, जैसे परमाणु रिएक्टर हो गए, लैब्स हो गई आपकी, हॉस्पिटल्स हो गए, और जो आपके डायग्नोस प्रयोजन के लिए जो रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है वो भी जैसे एक्सरे, जो कि उसके एक्सपोज तो होता है लेकिन उससे हमें लाभ भी मिलता है कि हम उसमें किसी बीमारी का डायग्नोस भी कर पाते हैं, क्योंकि कम मात्रा में अगर ये रेडिएशन निकलते हैं तो पारितंत्र को भी और हमारे जीवन के अलग अलग लाइफ फॉर्म्स में भी इसकी इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है, इम्पोर्टेंट प्रभाव ये डालता है। और अभी ये माना भी जाता है कि अगर कम मात्रा में लगातार अगर इस रेडिएशन का उपयोग किया जाए तो वो भी हानिकारक हो सकता है, और इसके चलते क्या हो सकता है कि बचपन में होने वाले जो ब्लड कैंसर है, या आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट होते, गर्भपात हो जाता है, बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, शिशु मृत्यु दर बढ़ती है, बढ़ता हुआ एड्स का खतरा भी बढ़ जाता है, उसके अलावा भी कई हमारे इम्यूनिटी जो डिसऑर्डर हैं वो भी पैदा हो जाते हैं। और जब कभी कुछ परीक्षण किए जाते हैं, एटॉमिक परीक्षण, जैसे भूमि परीक्षण, भूमिगत परीक्षण भी करते हैं, तो वो क्या करता है, वो विकिरण को कहीं आसमान में नहीं छोड़ता है बल्कि वो भूमि के अंदर उसे छोड़ता है। जब वो विकिरण भूमि के अंदर रहते हैं तो पानी उन्हें सोख लेता है और वो इस तरह से वो भूमि का जल में चले जाते हैं। जब हम उस जब वो जल में ये मिक्स हो गया तो पौधों की जड़ें क्या करती है, पानी तो जड़ भूमि से ही लेती है, वो सोख लेती है, और इस तरह से जो ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है ये हमारे फूड चेन में भी प्रवेश कर जाते हैं, और जब इन्हें दूसरे पशु और मनुष्य खा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि ये मनुष्य में भी पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑयल स्पिल की, यानी जो तेल रिसाव है या तेल का जो प्रदूषण है वो कैसे होता है। ये क्या करता है कि ना कई बार किसी टैंक समुद्र में चल रहा है या किसी वाटर बॉडी में कोई टैंकर या शिप जा रहा है और वो उससे कुछ तेल जो है लीक हो गया पानी के उसमें, और सबसे ज्यादा ये प्रभाव जो रिसाव होता है उससे ये क्या करता है, मेरीन पोल्यूशन को कर देता है ये। इससे क्या होता है कि जो परिवहन पोत है उससे रिसाव हुआ और एक वो खतरा बन जाता है हमारे ये जो मरीन लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ के लिए। और इसका सबसे सामान्य बात की कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के समय ये हो सकता है, और ये क्या होता है छोटे और बड़े पैमाने दोनों तरह से हो सकती है घटना। अभी रिसेंटली पिछले साल अगर देखें तो रूस के पास में किसी नदी में टैंकर से जो ले जा रहा था वो ऑयल फैल गया और उससे काफी बड़े एक्वेटिक लाइफ को काफी नुकसान पहुंचा था। तो और ये क्या होता है कि ना कई बार हमारे जो भूमिगत मतलब पानी के अंदर भी हमारी कुछ लाइन्स चल रही है, पाइपलाइंस जो जा रही होती हैं, उसमें भी तेल टैंकर में अगर कुछ लीकेज हो जाए तो अभी ये इफेक्ट करता है। उसी जैसे अगर जैसे कोई मोटर बोट पाए हैं उससे भी समुद्र में तेल गिर जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर साल करीबन 1,000 टन तेल जो है वो समुद्र से लाया जाता है और उसमें से कम 1-2 टन तो समुद्र में फैली जाता है। इससे क्या होता है जब रिसाव हो जाता है ना कुछ ही उसमें, क्योंकि जलीय जीव जो है वो पानी में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, उसी से अपनी सांस लेते हैं, तो ये जब एक लेयर बन जाती है पानी के ऊपर तो जो उसके जल के अंदर जो मछलियां हैं, शेल फिश हैं, जो प्लैंकटॉन्स हैं वो उनमें घुटन होती है, और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उसमें आ जाते हैं, उनके कारण वो मर जाते हैं। और ये तो कुछ घंटे में तो ये समझते हैं, और कुछ एक दो दिन के बाद में जो उसके जल में जो पक्षी होते हैं या जो स्तनपाई दूसरे होते हैं वो उनके भी मर जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो मैरीन इकोसिस्टम है उस पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि तेल रिसाव से हो या जो जो विष निकल रहा है, जो भी टॉक्सिन्स निकले हैं, उससे एल्गल ब्लूम होता है। और एल्गल ब्लूम यानी जो शैवाल वृद्धि हो रही है वो गठन का प्रभाव पड़ जाता है, और इसके कारण जो है जो वाटर बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो भारी संख्या में जो जलीय जीव है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और स्थलीय जीवन पर भी तेल फैलाव का रिसाव का फर्क पड़ता है, जैसे खाड़ी है, ज्वार नद है, तट है, मिट्टी है, ये सब क्या होते हैं, तेल रिसाव के खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। और कई जो तटीय गतिविधियां हैं जो खास तौर से जो तैराकी है, नौका विहार है, मछली पकड़ना है, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और तटीय क्षेत्र में जो पर्यटन है या होटल व्यवसाय है उस पर भी गंभीर प्रभाव देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं हैजार्डियस वेस्ट यानी उनके बारे में कि जब कोई भी जो पदार्थ है अगर वो वातावरण में मौजूद है या जो वातावरण में छोड़ा जा रहा है, या तो वो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर करेगा या फिर वो पर्यावरण के कल्याण के लिए भी हानि पहुंचाएगा, तो इसे हम कहते हैं कि इसे हम संकटदायी पदार्थ या फिर हम कहते हैं हैजार्डियस वेस्ट या संकटदायी अवशिष्ट कहते हैं। और जब कोई भी पदार्थ है जिसमें एक विकिरण से अगर स्वास्थ्य पर ऐसा प्रभाव पड़े जो कि बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़े, तभी हम उसे हैजार्डियस पदार्थ कहते हैं। और अगर कोई हैजार्डियस पदार्थ है तो उसमें कई सारे लक्षण होते हैं उसके बेस पर हम कहते हैं कि वो ये हैजार्डियस सब्सटेंस है, यानी उसमें टॉक्सिसिटी होगी यानी विषाक्तता होगी, ज्वलनशीलता होगी, संक्षारक होगा और विस्फोट यानी एक्सप्लोसिव नेचर भी उसका होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई पदार्थ, कोई भी अवशिष्ट पदार्थ जिसमें खतरनाक या बहुत हानि, कोई भी पदार्थ अगर है अवशिष्ट जिसमें कि खतरनाक या बहुत ही हानिकारक तत्व पाया जाता है तो उसे हम अवशिष्ट कहते हैं। और संकटदायी अवशिष्ट जो है वो कई विभिन्न स्रोतों जैसे घर से घर की वस्तुएं हो सकती हैं, स्थानीय क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उद्योग है, कृषि है, निर्माण है, अस्पताल है, प्रयोगशाला है, पावर प्लांट्स हैं, इनसे भी पैदा हो सकते हैं। और इसको जो निपटान के संबंध से जो संबंधी समस्याएं हैं प्लस उसका प्रभाव क्या है और कैसे वो उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में एक टेबल आपकी दी है 14.4 जिसमें कि घातक अपशिष्ट उनके निपटान और प्रभाव के बारे में बताया है। तो जैसे हम स्रोत अगर बात करते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट कहाँ से मिलते हैं, कचरे के जलाए जाने से, अधूरा दहन या जल निकायों से निष्कासित होने पर, जैसे कचरा जलाते हैं तो जहरीली लपटें होती हैं जो कि क्लोरीन, पॉलीविनाइल क्लोरीन, इसके कारण क्लोरीन अगर जा रही है तो ये एसिड ड्रेन के करने के लिए होगा। उसी तरह से अगर कई बार जली लकड़ी आधी जली को भुजा दें उसमें वो धुआं निकलता रहता है तो उससे क्या होता है डाइऑक्सिन आर्गन उसमें जो पॉल्यूटिंग एजेंट है जो कि कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। उसी तरह से जो जल निकायों में निष्कासित होते हैं उनका निपटान उसमें क्या क्या एजेंट होते हैं, क्लोरोफिनोन हो सकता है, क्लोरीन हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक अगर जलती है तो उसके उसमें क्या होता है उससे पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपाइलिन है, पॉलिस्टर है, उससे भी कुछ गैसें निकलती हैं, हानिकारक गैसें होती हैं, उत्पन्न होती हैं, और इससे भी विषाक्त पारिस्थितिक प्रदूषण इसका प्रभाव हो सकता है। न्यूक्लियर अपशिष्ट जो है वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट की अगर हम बात करें तो अस्पतालों से, हमारे प्रयोगशालाओं से निकलते हैं जो कि धीमी या चिकित्सा में निरंतर के उपयोग से होते हैं, कृषि में भी कुछ निकलते हैं अपशिष्ट जो कि स्वास्थ्य के लिए खतरा होते हैं और कैंसर जनित म्यूटेशंस भी पैदा करते हैं। कृषि एग्रीकल्चरल वेस्ट में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में भी निकलते हैं जो कि खाद या गोबर से, तो उसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट के निकलते हैं, जैसे सब्जियों में एकत्र हो गए, मिथेनोमेग्लोमिया साइनोसिस का कारण बन जाते हैं। अगर नाइट्रस ऑक्साइड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देख सकते हैं हम उसे. अमोनिया का है तो उसमें जलीय जीवन पर प्रभाव पड़ता है, कवक वृद्धि को बढ़ावा देते हैं. और जो एपीफाइट्स हैं या फिर हमारे वनों में अपक्षय के कारण होते हैं. फॉस्फेट की अगर बात करें, एग्रीकल्चर वेस्ट यानी अगर हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं फॉस्फेट वाला, तो उससे भी क्या होता है, वो भी जलीय पर्यावरण को सुपोषित करता है और इसे हम यूट्रिफिकेशन यानी सुपोषण हो गया, उसमें जल में फॉस्फेट की मात्रा बढ़ गई है. फाइटोसैनिटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि कीटनाशक हो सकते हैं, पीड़क नाशक हो सकते हैं, कवक नाशक हो सकते हैं. तो ये क्या करते हैं कि बहते जल के साथ सॉइल में भी प्रवेश कर जाते हैं और जलीय जीवन का प्रदूषित जल वो वाटर टेबल को भी प्रभावित करता है और साथ ही कैंसर कार्सिनोजन और किडनी फेल होने के जैसे प्रभाव देखे जा सकते हैं. उसी तरह से मीथेन की अगर हम बात करें तो रूमिनेंट मवेशियों या कार्बनिक पदार्थों का फर्मेंटेशन के थ्रू होती है और ये भी एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है. तो इस तरह से हमने बात की आज एसिड रेन की, हमने बात की न्यूक्लियर वेस्ट के हजार्स की, बात की ऑयल स्पिल की, बात की और ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात की. और अब हम सबको, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमें व्यक्तिगत रूप से घरेलू, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सतत रखने के लिए सहयोग देना होगा, समर्थन करना होगा, इन्हें अपना कंट्रीब्यूशन हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए देना होगा. तो अब मैं इस चर्चा को समाप्त करती हूँ. नमस्कार.